आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीक्षा है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन में हमने क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 3, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, को पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आज हम उस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, पर उस स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले मैं जल्दी से आपको चैप्टर का रिकैप दे देती हूँ। स्टूडेंट्स, स्टोरी शुरू होती है जब हमें बताया गया है कि ऑसवेल किसी जासूस से मेल नहीं खाता था जिसके बारे में फॉलर जानता हो, और फॉलर और ऑसवेल एक फ्रेंच होटल के अंधेरे और बदबूदार गलियारों से निकल रहे थे, जहां पर ऑसवेल का एक कमरा था। फॉलर को ऑसवेल के साथ अब निराशा होने लगी, क्योंकि ऑसवेल तो बिल्कुल भी जासूस जैसा नहीं लगता था और फॉलर तो वहां पर एक जासूस से मिलने आया था। सबसे ऊपरी छठी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था, और किसी ऐसे इंसान के लिए जो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक विचार रखता हो, उसके लिए यह कोई अच्छा स्थान नहीं था। ऑसवेल की एक और विशेषता थी कि वो बहुत ज्यादा मोटा था। फिर उसके बोलने के तरीके, उसके लिए भी वो जाना जाता था। वैसे वो ठीक ठाक फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था, लेकिन उसने अपना अमेरिका का लहजा अभी तक नहीं छोड़ा था, जिसे वो 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस लेकर आया था। स्टूडेंट्स, यानी ऑसवेल मेनली एक अमेरिकन है जो बोस्टन में रहा करता था, और अब वो फ्रांस में आया है और वहां पर ये एक जासूस है। ऑसवेल ने फॉलर से कहा कि आप निराश हैं, आपको बताया गया था कि मैं एक जासूस हूँ, एक जासूस जो षड्यंत्र और खतरों से घिरा रहता है। आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक लेखक हैं। आप रात को रहस्यमयी चीजों की, पिस्तौल चलने की और शराब में मिली दवाइयों की कल्पना कर रहे होंगे कि मैं इन सारे एडवेंचर से जूझता हूँ, पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, इसीलिए लगता है आप बहुत ज्यादा निराश हैं। फिर ऑसवेल ने फॉलर को कहा, इसके बजाय आपने एक उबाऊ शाम फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक ऐसे लापरवाह मोटे से आदमी के साथ गुजार दी जिसे किसी ने भी कोई गुप्त सूचना नहीं दी है, यानी कोई भी संदेश उसे नहीं मिला है। आप तो उस टाइम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अभी कोई लड़की आएगी और वो मुझे कोई ना कोई राज की बात बता के जाएगी। फिर वो ऑसवेल खुद पर ही हंसने लगा और उसने दरवाजे का ताला खोला और एक तरफ खड़ा हो गया, ताकि जो उसके साथ उसका मेहमान आया है यानी फॉलर, वो भी रूम के अंदर आ सके। ऑसवेल ने कहा कि आप भ्रमित हैं, लेकिन मेरे युवा दोस्त, अब खुश हो जाओ, मेरे पास कुछ ऐसे कागजात हैं जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट हैं और जिन पर कई आदमी और औरतों की जान निर्भर है, और कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है उन कागजों के लिए, और शायद ये कागज इतिहास को भी बदल सकते हैं। जैसे ही वो बोल रहा था, वैसे ही ऑसवेल ने अपने पीछे का दरवाजा बंद किया और उसके बाद लाइट ऑन कर दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, फॉलर ने दिन भर के पहले सच्चे रोमांच का अनुभव किया। फॉलर को शुरू से ही ये लग रहा था कि जब वो ऑसवेल से मिलने आएगा, क्योंकि ऑसवेल एक जासूस है, तो जरूर उसे भी किसी ना किसी रोमांच का अनुभव जरूर होगा, यानी उसके साथ भी कुछ एडवेंचर होगा। वो भी ये देख पाएगा कि एक जासूस असल में कैसे रहता है। शायद
फॉलर के सामने ही ऑसबल के पास कोई गुप्त संदेश भेजा जाए या ऐसा ही कुछ सीक्रेट काम किए जाए। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंचे उन्होंने देखा कि एक आदमी वहां पर खड़ा है और उसके हाथ में है एक पिस्तौल जो उन्होंने फॉलर और ऑसबल की तरफ तान रखी है।
जब ऑसबल का ध्यान उस आदमी की तरफ गया तो ऑसबल ने कई बार अपनी पलकें झपकाई और उसने खांसते हुए कहा, मैक्स आपने तो मुझे चौंका ही दिया था। मैं तो सोचता था कि आप बर्लिन में हैं, लेकिन आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑसबल समझ गया कि ये इंसान कौन है, यानी ऑसबल उस इंसान को पहले से ही जानता था जिसका नाम था मैक्स, और ऑसबल को लगता था कि मैक्स अभी बर्लिन में है, लेकिन मैक्स तो था ऑसबल के कमरे में। तो ऑसबल ने पूछा कि आप मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैक्स दुबला था, लंबा भी नहीं था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा था जैसे लोमड़ी हो, यानी क्लेवरनेस तो मैक्स के चेहरे से ही झलक रही थी। और वैसे वो दिखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था, लेकिन उसके हाथ में पिस्तौल जो थी उससे तो डर लगना वाजिब था। मैक्स ने कहा, रिपोर्ट, कुछ नई मिसाइलों से संबंधित जो रिपोर्ट आज रात आपके पास लाई जा रही है, मैंने सोचा कि मैं उसे आपसे ले लूं। आपके बजाय वो मेरे हाथों में ज्यादा सुरक्षित रहेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये उसी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में ऑसबल ने फॉलर को बताया था कि काफी लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये कागज लिए हैं और इस कागज में इतनी क्षमता है कि वो इतिहास को भी बदल दे। तो मैक्स भी वही रिपोर्ट ऑसबल से लेने के लिए आया था। ऑसबल चलकर एक कुर्सी के पास गया और धम से बैठ गया। ऑसबल ने वहां बैठकर बहुत सीरियसली कहा, इस बार तो मैं होटल मैनेजमेंट के साथ लड़ाई करने वाला हूँ। मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ। एक महीने में ये दूसरी बार हुआ है जब मेरे कमरे में कोई बालकनी से आ पहुंचा। फॉलर ने फिर जो कमरे में एकमात्र खिड़की थी उसकी तरफ देखा, और वो बहुत आम सी खिड़की थी, और अब वो देख पा रहा था कि रात ढलती जा रही है। तभी मैक्स ने यह सुनकर पूछा, बालकनी? नहीं, मेरे पास तो एक ऐसी चाबी है जिससे मैं सारे ताले खोल सकता हूँ। मैं तो बालकनी से नहीं आया, और बालकनी के बारे में अगर मुझे पता होता तो मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता कि मैं मेन गेट से आऊं, दरवाजा खोलूं और तब अंदर जाऊं। मैं सीधा बालकनी से ही ना आ जाता। स्टूडेंट्स, यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब मैक्स हाथ में पिस्तौल लेकर ऑसबल की तरफ उस पिस्तौल को ताने खड़ा था, तब भी ऑसबल ने अपना धीरज नहीं खोया। वो बिल्कुल भी हड़बड़ाया नहीं, बल्कि वो तो एक कहानी बुनने लगा था। वो कहानी क्या है, अब आगे सुनिए। ऑसबल ने कहा कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये अगले अपार्टमेंट की है। देखो, ये कमरा एक बड़े कमरे का हिस्सा हुआ करता था, और अगला कमरा उस दरवाजे के जरिए रहने वाला कमरा हुआ करता था, यानी लिविंग रूम हुआ करता था। इसमें वो बालकनी थी जो अब मेरी खिड़की के नीचे है। अगले वाले खाली कमरे के दरवाजे द्वारा आप इसमें आ सकते हैं, और पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था। मैंने मैनेजमेंट से कहा था कि इसे बंद करा दें, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे बंद नहीं कराया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ऑसबल ने मैक्स के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि खिड़की से बाहर एक बालकनी है, और ऑसबल ने ये भी बता दिया है कि उस बालकनी से रूम में आया जा सकता है, और इस महीने में ये दूसरी बार हुआ है कि उस बालकनी से कोई आया है,
लेकिन मैक्स तो आया नहीं, तो मतलब पहली बार ही ऐसा हुआ है। जब वो ये सब कुछ बता रहा था तो फॉलर के दिमाग में बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि ये देखो ये कैसा आदमी है, सामने वो गन लेकर खड़ा है और ये आराम से कुर्सी पर बैठा है और इस बात की शिकायत कर रहा है कि इसके कमरे में बालकनी से लोग आते हैं। मैक्स ने फिर फॉलर की तरफ देखा, वो ऑसबेल से कुछ फीट दूर ही तना हुआ खड़ा था और फिर उसे कमांड करते हुए बोला कि प्लीज आप बैठ जाइए, मुझे लगता है हमें आधे घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। फिर इस पर ऑसबेल ने कहा 31 मिनट। मीटिंग का समय 12:30 का था। काश मुझे पता चल जाता कि मैक्स तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चल गया। अब मैक्स को ये भी पता था कि ऑसबेल के पास वो रिपोर्ट 12:30 आनी है, तो उसने फॉलर को कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, आधे घंटे का काम है, जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी मैं उस रिपोर्ट को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। इस पर ऑसबेल ने कहा कि नहीं, 12:30 मीटिंग का टाइम है और अभी 31 मिनट तुम्हें वेट करनी है। फिर ये सुनकर मैक्स मुस्कुराने लगा और ऑसबेल ये जानना चाहता था कि मैक्स को उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। तो मैक्स ने कहा कि हमारी इच्छा थी कि हम जान पाते कि रिपोर्ट आपके लोगों के हाथ कैसे लगी, पर कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं आज रात इसे वापस ले लूंगा। अब मैक्स ये कह रहा था कि हम तो ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली, यानी ऑसबेल और मैक्स दो अलग अलग एजेंसीज के एजेंट्स हैं, यानी दो अलग अलग एजेंसीज के लिए काम करने वाले स्पाइज हैं और वो दोनों एजेंसीज एक ही रिपोर्ट के पीछे पड़ी हैं और वो रिपोर्ट रिलेटेड है मिसाइल से। अब ये लोग आपस में ये बातचीत कर ही रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। वो खटखटाने की आवाज सुनकर मैक्स हड़बड़ा गया, उसने कहा ये कैसी आवाज है, बाहर कौन है। खटखटाने की आवाज सुनकर फॉलर भी उछल पड़ा, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को यहाँ पर कौन आया है और ये गेट क्यों खटखटाया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट के आने का टाइम तो 12:30 था। इतने में ऑसबेल ने मुस्कुराकर कहा वो पुलिस होगी, मुझे लगा कि इतने इम्पोर्टेंट कागज हैं जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए। मैंने पुलिस वालों को कह दिया था कि वो मेरे पास आकर देख ले कि सब ठीक ठाक है भी या नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ऑसबेल ने एक कहानी गढ़ी है और उस कहानी की सच्चाई क्या है वो हम आगे जानेंगे, पर यहाँ आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि मैक्स के हाथ में पिस्तौल थी और पिस्तौल की नोक पर था ऑसबेल, लेकिन ऑसबेल फिर भी घबराया नहीं, बल्कि वो बहुत शांति से, बहुत धैर्य से सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातें कह रहा था ताकि वो बच सके और साथ में बच सके वो रिपोर्ट्स जो ऑसबेल के पास आने वाली हैं। अब दरवाजे पर बार बार खटखटाने की आवाजें आ रही थी तो मैक्स को थोड़ा डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, बार बार कौन ये दरवाजा खटखटा रहा है। और फिर दरवाजे से बार बार आवाजें आने की वजह से मैक्स की घबराहट बढ़ती चली गई। तो इतने में ऑसबेल ने कहा कि मैक्स अब तुम क्या करोगे, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो किसी ना किसी तरह तो कमरे के अंदर आ ही जाएंगे, क्योंकि कमरे पर कोई ताला भी नहीं लगा हुआ और तुम्हें देखकर वो गोली चलाने से हिचकिचाएंगे भी नहीं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑसबेल मैक्स को डराना चाहता है, उसे ये समझाना चाहता है कि वो कितनी बुरी तरह से फंस चुका है और अब
उसके पास कोई जरिया नहीं है कि वो वहां से बच के भाग सके। मैक्स का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था और वो खिड़की की ओर बढ़ा। उसने रात के अंधेरे में अपनी एक टांग बाहर निकाली और ऑसबेल को चेतावनी दी कि इन्हें वापस भेजो, मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूँ, उन्हें भेज दो वरना मैं गोली चला दूंगा और इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मर जाओ चाहे मैं फंस जाऊं, पर अगर तुमने उन्हें नहीं भेजा तो मैं गोली चला दूंगा और मैं यही खड़ा हूँ बालकनी में। स्टूडेंट्स, बाहर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ये बातें ऑसबेल और मैक्स के बीच उस टाइम चल रही थी जब गेट पर कोई खड़ा था और बार बार गेट को खटखटा रहा था। यहाँ फॉलर भी चुपचाप उस रूम में ही खड़ा था और वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि ये गेट पर है कौन, और वो यही मान रहा था कि जैसा ऑसबेल ने बताया कि गेट पर पुलिस है तो पुलिस आ चुकी है। फॉलर ये समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग बच पाएंगे या फिर आज मैक्स उन्हें गोली मार देगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे क्या हुआ वो जानने के लिए हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी पेज नंबर 16 के लास्ट पैराग्राफ पर आइए। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। मिस्टर ऑसबेल। दरवाजे पर आवाज तेज होती चली गई, कोई जोरों से खटखटाने लगा और उसके बाद एक आवाज आई, मिस्टर ऑसबेल, यानी कोई मिस्टर ऑसबेल को पुकार रहा था। चलिए स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 17 पर आइए। पेज नंबर 17 पर दी गई पिक्चर को देखिए। यहाँ पर फॉलर खड़ा है, ऑसबेल एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और मैक्स एक टांग बाहर करे अंधेरे में पिस्तल ताने हुए बालकनी की तरफ जा रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टोरी पर वापस आइए। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट द गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अपने शरीर को अब भी मोड़े हुए ताकि उसकी बंदूक उस मोटे आदमी यानी ऑसबेल और उसके मेहमान यानी फॉलर पर तनी रहे। खिड़की पर चढ़े उस आदमी ने अपने खाली वाले हाथ से चौखट को पकड़ा, यानी मैक्स ने चौखट को पकड़ा ताकि खुद को सहारा दे सके। फिर उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर घुमाई और वह खिड़की के छज्जे पर चढ़ गया। The door knob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and drop to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once, shrilly. दरवाजे का गोल हैंडल घूमा। फुर्ती से मैक्स ने अपने बाएं हाथ से धक्का दिया कि वो खुद को आजाद कर सके और वो बालकनी में जा सके। फिर जैसे ही वो गिरा, वैसे ही वो एक बार जोर से चीखा। The door opened, and a waiter stood there with a tray, a bottle and two glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. Darwaza khula aur wahan ek waiter ek tray, ek bottle aur do glass liye khada tha. उसने कहा, सर ये रही वो शराब जिसके लिए आपने ऑर्डर दिया था। उसने ट्रे को मेज पर रखकर तुरंत बोतल का ढक्कन खोला और कमरे से बाहर चला गया। स्टूडेंट्स, यानी
वहां पर कोई पुलिस थी ही नहीं। वो डोर असल में वो वेटर खटखटा रहा था, और वो इसीलिए बार बार खटखटा रहा था क्योंकि ऑस्पेल ने ऑर्डर किया था शराब के लिए, और वो उसे देने के लिए आया था, और उसे लगा मिस्टर ऑस्बेल इधर उधर होंगे, वॉशरूम में होंगे या सो रहे होंगे, तो इसीलिए वो बार बार खटखटाकर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। व्हाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। सफेद चेहरे के साथ कांपते हुए फॉलर हड़बड़ाया, लेकिन वो पुलिस। अब फॉलर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि ऑस्पेल ने तो कहा था बाहर पुलिस खड़ी है, लेकिन बाहर तो कोई पुलिस है ही नहीं, ये तो बस ये वेटर था। फॉलर को लगा लो भाई फंस गए, पुलिस तो थी नहीं, ये तो वेटर था, मैक्स बाहर पिस्टल लेकर खड़ा है बालकनी में, अब तो मैं फंस गया। There was no police. Ospel sighed. Only Henry, whom I was expecting. Ospel ने कहा, पुलिस तो थी ही नहीं, सिर्फ वेटर Henry था। और मुझे पता था कि वो यहाँ पर आने वाला है। But won't that man out on the balcony? Fowler began. लेकिन बालकनी वाले आदमी का क्या हुआ? Students, यहाँ पर Fowler Max के बारे में पूछ रहा है। वो ये सोच रहा है कि Max तो अभी भी बालकनी में खड़ा है, इनके सर से बंदूक हटी नहीं है, और जब Max को पता चलेगा कि Ospel ने झूठ बोला है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा, और पक्का इस बार तो वो हमें गोली मार ही देगा। No, said Ospel. He won't return. You see, my young friend, there is no balcony. Ospel ने कहा कि नहीं, वो वापस लौटकर नहीं आएगा। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर कोई बालकनी है ही नहीं। स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि वहां पर कोई बालकनी थी नहीं, और मैक्स उस खिड़की से कूद गया। वो खिड़की छठी मंजिल पर थी, जो उस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल थी, और वहां से मैक्स कूद गया और वो सीधा नीचे गिरकर मर चुका है। इसीलिए ऑस्बेल कह रहा है कि वो कभी वापस नहीं आने वाला। तो ये थी स्टोरी स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में हमने देखा कि ऑस्बेल एक कितना अच्छा जासूस है, और इतनी बड़ी मुसीबत में होते हुए भी उसने अपनी स्पाई वाली यानी जासूस वाली हर एक स्किल का यूज किया। उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, यानी ऑस्बेल ये जानता था कि वेटर को तो आना ही है क्योंकि मैंने उसे ऑर्डर दे रखा है। तो जैसे ही ऑस्बेल ने मैक्स को देखा तो वो अपने मन में ही एक कहानी गढ़ने लगा। उसने बालकनी की झूठी कहानी बनाई, और जैसे ही वेटर आया उसने बोल दिया कि पुलिस आ गई है, तो मैक्स को लगा कि वो बालकनी में वेट कर लेता है। अंधेरा था ही, मैक्स ने ये देखा नहीं कि नीचे तो कोई बालकनी है ही नहीं, और वो सीधा कूद गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और ऑस्पेल की चलाकी से ऑस्पेल और फॉलर दोनों की जान बच गई। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ग्लॉसरी पार्ट को पढ़ते हैं। आप सभी पेज नंबर 18 के ग्लॉसरी पार्ट पर आइए। रोमांटिक, इमेजिनेटिव, हैविंग अ फैंटास्टिक व्यू ऑफ रियलिटी। रोमांटिक का मतलब है ऐसा पर्सन जिसकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा हो। पैसेबली, जस्ट वेल इनफ। टॉलरेबल, वेल। पैसेबली का मतलब है जो बिल्कुल ठीक हो। एस्पियोनेज, स्पाइंग। एस्पियोनेज का मतलब है जासूसी। स्लूपी, केयरलेसली ड्रेस्ड। स्लोपी का मतलब है जो लापरवाह हो और जो लापरवाह तरीके से ड्रेसअप हुआ हो। प्रोजियाक ऑर्डिनरी। प्रोजियाक का मतलब है जो बिल्कुल आम है। चकल्ड लाफ्ड क्वाइटली विदाउट ओपनिंग द माउथ। चकल्ड का मतलब है दबी हुई हंसी। वीज्ड स्पोक ब्रीदिंग नॉइजली एंड हैवीली। ब्रीज्ड का मतलब है बड़े ही भारी तरीके से सांस लेते हुए बोलना। मिसाइल्स वेपन्स डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल और ऑटोमेटिकली। मिसाइल्स वो वेपन्स हैं जो ऑटोमेटिकली या फिर रिमोट कंट्रोल से चलती हैं। श्रिली पियर्सिंगली इन अ हाई पिच। श्रिली का मतलब है तीखेपन के साथ। चलिए स्टूडेंट्स अब थिंक अबाउट इट करते हैं। क्वेश्चन वन, ऑस्बल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। What do secret agents in books and films look like in your opinion? Discuss in groups or in class some stories or movies featuring spies, detectives and secret agents and compare their appearance with that of Ausbil in this story. Students, Ausbil की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसे कि सीक्रेट एजेंट की होती है, क्योंकि ऑस्बल थोड़ा मोटा था। और हम देखते हैं कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं उनके हाथ में गन होती है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग बिल्ड के होते हैं, चुस्त दुरुस्त रहते हैं, लेकिन ऑस्बल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो आप बताइए कि आपने बुक्स या फिल्म्स में सीक्रेट एजेंट्स देखे होंगे, तो आपके हिसाब से सीक्रेट एजेंट्स कैसे होते हैं और जो स्टोरीज आपने सीक्रेट एजेंट से रिलेटेड देखी हो वो भी आपस में डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन टू, हाउ डज ऑस्बल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम। लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। What makes it a convincing story? ऑस्बल Max को यह विश्वास कैसे दिलाता है कि उसके कमरे के साथ एक बालकनी है? उसके डिस्क्रिप्शन को एक बार फिर से पढ़ो और उसकी बताई बात को क्या विश्वसनीय बनाता है, यानी कैसे उसकी बात पर विश्वास किया जा सकता है। ऑस्बल finds Max in his hotel room. He says that he will raise objection against the balcony of his room to the hotel authorities. He says this in a convincing manner. He tells Max that he is the second person who has entered his room through the balcony outside the window of the room. There is darkness around the window. Max gets convinced that there is a balcony. He says that if he knew about it, he could avoid some trouble. ऑस्बल Max को अपने कमरे के अंदर पाता है। वह कहता है कि वह अपने कमरे के बाहर वाली बालकनी के अगेंस्ट होटल के अधिकारियों से शिकायत करेगा। इस बात को वह विश्वसनीय ढंग से बताता है। वह मैक्स को बताता है कि खिड़की से बाहर बालकनी के द्वारा उसके कमरे में आने वाला वह दूसरा व्यक्ति है। खिड़की के आसपास अंधेरा था। मैक्स इस बात को मान लेता है कि वहां पर एक बालकनी है। वह कहता है कि अगर उसे पता होता तो उसकी थोड़ी सी परेशानी कम हो जाती और वो ऐसे छुप छुप के आने से बच जाता, वो सीधा बालकनी से ही आ जाता। क्वेश्चन थ्री, लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक ऑस्बल थॉट अप हिज प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ मैक्स? डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगनिंग? Or did he make up a plan taking advantage of the events as they happened? स्टोरी को देखकर ये बताइए कि ऑसबेल ने मैक्स से छुटकारा पाने के लिए प्लान कब सोचा होगा। आपको लगता है कि शुरुआत से ही ऑसबेल ने सोच रखा होगा कि मैक्स आएगा तो वह ऐसे करेगा, या फिर उसने वहां जो सिचुएशंस हो रही थी उसका फायदा उठाकर एक प्लान बनाया था। ऑसबेल मेड अप अ प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इवेंट्स एज दे हैपेंड। ही न्यू that the waiter will come and knock the door. And he also knew that when the waiter will knock the door, Max will try to hide. So, he made up the story of the balcony too. And when the waiter came, Ozbel said that this is the police. So, Max, in order to hide, jumped on the balcony, which was nowhere. And because of this, Max died. Students, जो भी परिस्थितियां वहां पर थी, जैसे सिचुएशन बन गई थी, ऑसबेल ने उसी तरह से एक स्टोरी बना ली। उसे पता था वेटर आएगा तो वो कह देगा कि पुलिस है। अब पुलिस आएगी तो मैक्स को भी छुपने के लिए कोई जगह चाहिए, तो उसने बालकनी की स्टोरी बना दी। और जब वेटर आया और ऑसबेल ने कहा कि पुलिस आ गई है, तो मैक्स छुपने के लिए बालकनी में गया, पर बालकनी तो थी ही नहीं, इसलिए मैक्स मर गया। तो यहाँ पर ऑसबेल ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क है कि आपको ये सारी स्टोरी पढ़कर आनी है और उसके बाद एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखना है। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।